Hare Krishna, this is special class on Tulsi Maharani part 2 given in All Indian Institute of Medical Sciences, New Delhi on 2nd August 2016 by myself, Prashant Mukund Das.
Vrinde Maharani Namo Namah Namo Namah Tulsi Maharani Namo Namah Namo Re Maya Namo Narayani Namo Namo Re Maya Namo Narayani Namo Namah Tulsi Maharani Namo Namah Jako Daras Paras Agnashe Jako Daras Paras Agnashe Mahima Ved Puran Bakhani Mahima Ved Puran Bakhani Namo Namah Tulsi Maharani Namo Namah Namo Namah Vrinde Maharani Namo Namah Jako Patra Manjari Komal Shripati Charan Kamal Lapatani Namo Namah Tulsi Maharani Namo Namah Vrinde Maharani Namo Namah Dhanna Tulsi Maya Purana Tap Kiye Dhanna Tulsi Maya Purana Tap Kiye Shri Shaligram Mahapatrani Shri Shaligram Mahapatrani Namo Namah Tulsi Maharani Namo Namah Vrinde Maharani Namo Namah Tulsi Maharani Namo Namah Dhup Deep Naved Arati Dhup Deep Naved Arati Phoolan ki varkha varkhani Phoolan ki varkha varkhani Chapan bhog chate sau vyanjana Chapan bhog chate sau vyanjana Bina tulsi prabhu ek namani Bina tulsi prabhu ek namani Namo namah tulsi maharani Namo namah vrinde maharani Namo namah tulsi maharani Namo namah शिव शुक नारद और ब्रह्मादिक शिव शुक नारद और ब्रह्मादिक दूरत फिरत महामुनि ज्ञानी दूरत फिरत महामुनि ज्ञानी चंद्र शेखर मैया तेरो जस गावे चंद्र शेखर मैया तेरो जस गावे भक्ति दान दीजो महारानी भक्ति दान दीजो महारानी Namo Namah Tulsi Maharani Namo Namah Vrinde Maharani Namo Namah Tulsi Maharani Namo Namah Hare Krishna 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 Hare Hare हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी, जय वृंद महारानी जय वृंदे महारानी वृंदे महारानी जय वृंदे महारानी, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा, निताय गौरा हरिबो हरिबो हरिबोल, निताय गौरा हरिबोल निताय गौर हरिबो हरिबो हरिबोल निताय गौरा हरिबो। श्री श्री तुलसी महारानी की जय, श्री श्री वृंदा महारानी की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो आज हम अपने दूसरे भाग तुलसी महारानी कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अभी हम पहले कुछ तुलसी महारानी का गुणगान सुनेंगे, उनकी महिमा, उसके बाद उनके प्रकट्यकरण की एक और कथा सुनेंगे, और उसके बाद में तुलसी महारानी से जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रश्न जो कि हमें अक्सर लोग पूछते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर वर्णन है, तुलसी कानन राधे ग्रह यस्वतिष्ठते तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि नायान्ते यं किंकरः। हे श्री राधिके, जिसके घर में तुलसी का वन होता है उसके वह घर तीर्थ रूप है, वो यमराज के दूत कभी भी वहां नहीं जाते हैं। तो जिसके घर में तुलसी का वन होता है, एक होता है तुलसी पौधा, एक होता है तुलसी वन, जिसके घर में तुलसी वन है वहां कौन नहीं जाते हैं? यमराज कभी भी वहां प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये कृपा देती हैं। तो अपने घर में सभी को तुलसी का पौधा रखना चाहिए। तुलसी का पौधा रखने से उनके घर में यमदूतों का जो अकस्मात भय है कि मृत्यु हो सकती है, वो उस मृत्यु से टल सकते हैं। तो अकस्मात मृत्यु जैसे जो पाप हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं खाली तुलसी के वन को घर में रखने से। तो एक पौधा रखने की बजाय कोशिश करें ज़्यादा पौधे रखें तो वो तुलसी वन बन जाता है, 10-12 अगर हैं तो। इस तरह से तुलसी वन को रखना चाहिए। ये राधा रानी को भगवान वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से तुलसी की सेवा हमें करनी चाहिए। आगे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो जब श्रीधाम मायापुर में रहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं और हमारे लिए एक मंत्र लेकर आते हैं जिसका क्या नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड में आता है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का नियम था, वो तुलसी सेवा किस प्रकार करते थे। तो यहाँ पर वर्णन है, गंगा जले विहार करिया कतो क्षण, ग्रह आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन, तुलसीर जल दिया प्रदक्षिणा करी, भोजन बसे न गिया बोलो हरी हरी। तो पहला है, गंगा जले विहार करिया कतो क्षण, कुछ समय गंगा जल में विहार करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु गंगा में, उनके घर के पास गंगा नदी बहती थी, तो गंगा नदी जो है वो बहुत ही पवित्र नदी है क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकलती है, उसके लिए उसका नाम है विष्णुपदी। लेकिन गंगा नदी जो है वो यमुना से द्वेष करती है क्योंकि यमुना के जल में स्वयं भगवान कृष्ण ने वृंदावन में व्रज मंडल में बाल लीलाएं करी हैं। तो गंगा नदी भगवान के लीला करने के कारण यमुना से द्वेष करती है, तो इसके कारण जब गंगा नदी कलयुग में बह करके, क्योंकि भगवान द्वापर में आते हैं ना कृष्ण रूप में, तो कलयुग में भगवान चैतन्य रूप लेके आते हैं और कहते हैं गंगा से कि तुम चिंता मत करो, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे जल में लीलाएं करूंगा। तो गंगा नदी हरिद्वार से होते हुए जब कलकत्ता मायापुर में पहुंचती है तो वहां पर भगवान चैतन्य वहां पर लीला करते हैं। गंगा जले विहार करिया कतो क्षण, गंगा जल में विहार करते थे, लीलाएं करते थे। इसीलिए तो हम कई बार सुनते हैं ना, भगवान का नाम है बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी। तो लोग पूछते हैं जो अनजाने हैं, कहते हैं भगवान तो कभी बिहार नहीं गए तो उनका नाम बांके बिहारी तो भगवान का नाम बांके बिहारी इसलिए नहीं कि वो बिहार के हैं या बिहार गए थे, बिहार का मतलब है लीला करने वाले। तो जल क्रीड़ा करते थे चैतन्य महाप्रभु, गंगा जले विहार कौरिया कतोक्षण, और उसके बाद ग्रह आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये दिखाना चाहते हैं भक्त जनों को कि किस तरह से हमें अपने जीवन में भक्ति करनी चाहिए। तो पहले क्या करना चाहिए, स्नान, स्नान करने के बाद क्या करना चाहिए, ग्रह आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन, घर आके क्या करते हैं, श्री विष्णु का पूजन करते हैं। तो हमको भी अपने घर में शिव जी दुर्गा जी और गणेश जी का पूजन छोड़ करके किसका पूजन करना चाहिए, श्री कृष्ण या श्री विष्णु पूजन। और उसके बाद क्या करते थे, तुलसी र जल दिया प्रदक्षिणा करी, तुलसी को जल दान देते थे। जल दान देने के बाद में मतलब तुलसी के जड़ में पानी डालना, उसमें जल इतना डालें कि वो गले ना, और मतलब इतना कम ना हो कि वो सूख जाए, तो इतना ही जल डालें कि उसकी जो जड़ें हैं वो कैसी रहे, नम रहे, ठीक है, आधी गीली आधी सूखी। तुलसी र जल दिया प्रदक्षिणा करी, और उसके बाद क्या करना चाहिए, प्रदक्षिणा, कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तीन बार। हाँ, तो तीन प्रदक्षिणा करनी चाहिए, जैसे ये तुलसी महारानी का पौधा यहाँ आपके सामने रखा गया है, जैसे इसको हमने वस्त्र पहनाए हैं, इस तरह से तुलसी देवी के रूप में प्रकट है, तो उनको क्या पहनाए, वस्त्र पहनाकर, माला चढ़ाकर, आरती कर और उनकी तीन प्रदक्षिणा करनी चाहिए, है ना। तीन प्रदक्षिणा करने का मंत्र हम बाद में बताएंगे। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु भोजन र बसेन गिया बोलो हरी हरी, भोजन के लिए बैठते थे और क्या बोलते थे, हरी बोल, क्या बोलते थे, हाँ, तो हमें भी क्या बोलना चाहिए, हरी बोल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टीवी खोल, जैसे ही प्रसाद पाने बैठते हैं तो वैसे हम टीवी को खोल देते हैं, तो टीवी खोलने की बजाय क्या करना चाहिए, हरी बोल, है ना। तो हरी बोल कह के भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा जो नियम बनाया था किसने, चैतन्य महाप्रभु ने। आगे इसके अंदर वर्णन किया गया है कि किस तरह से तुलसी की जो मंजरियां हैं और उनकी सेवा हमको करनी चाहिए। तो तुलसी मंजरियों को ध्यान पूर्वक हमें तोड़ना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तुलसी मंजरियां हमने जैसे बताया था पिछली दफा भी, तुलसी मंजरियां तुलसी महारानी के नाखून कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें वर्णन की गई हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तुलसी वर्णन अर्चना महिमा इसके अंदर है। तो अद्वैताचार्य वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान जनार्दन कदापि तुलसी व्यक्तिरिक्त अर्चना सेवा को स्वीकार नहीं करते। मतलब किसी भी सेवा में कोई भी फल, कोई भी जल भगवान को अगर आप अर्पित करते हैं और उसमें तुलसी पत्र नहीं डालते हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी पत्र द्वारा भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है वो व्यक्ति गाय हत्या, ब्रह्म घाती एवं गुरु पत्नी गामी के समान पापी है। मतलब गुरु की जो पत्नी है उसके बारे में गलत सोचना, ब्रह्म हत्या करना मतलब किसी ब्राह्मण की हत्या करना, किसी जीव की हत्या करना, और यहाँ तक कि गाय की हत्या करने का पाप लगता है अगर हम तुलसी महारानी को लेकर शिव जी के चरणों पे, जैसे आजकल लोग सावन के महीने में बड़े बोलबम करते करते क्या करते हैं, शिव जी को तुलसी चढ़ा देते हैं, भूल जाते हैं क्या चढ़ाना है कहाँ चढ़ाना है। यहाँ तक कि राधा रानी के चरणों पर भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, खाली कहाँ करते हैं, श्री विष्णु अर्पित, श्री विष्णु की पूजा के लिए, या तो विष्णु या कृष्ण या नरसिंह या चैतन्य, इसके अलावा और कहीं पे भी हम तुलसी महारानी को नहीं चढ़ाते हैं। आगे कहते हैं, तुलसी मंजर इभिस्त पूजितो येन केशवः आजन्म कृत पापस्य तेन समर्जित लेप। जो व्यक्ति तुलसी मंजरी द्वारा केशव की पूजा करता है उसकी अनेकों जन्म जर्जित पाप राशि पूर्ण रूप से साफ हो जाती है तुलसी मंजरी से। तो तुलसी की मंजरियों का प्रश्न रहता है कि कब तोड़ें, कैसे तोड़ें, तो उनके फूल बनने से पहले, पहले वो फूल बन जाएं, उनके जैसे ही वो छोटी छोटी मंजरियां आती हैं उनके सूखने और फूल बनने से पहले उन्हें तोड़ना चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं तोड़ते हैं तो वो पूरी तुलसी महारानी की शक्ति को अपने अंदर, अपने फूल को खिलाने में यूज कर लेते हैं और नीचे के पत्ते सारे सूख जाते हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि तुलसी जैसे ही हरी हरी तुलसी की मंजरियां आए उनको तोड़ें और फिर क्या करें, भगवान के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि यहाँ लिखा है केशव जनार्दन के चरणों में अर्पित करने से सारी पाप राशियों का समूल नष्ट हो जाता है। सोचिए जरा, जो आपने कभी पाप किए होंगे जाने अनजाने वो भी सारे नष्ट हो जाएंगे, है ना। आपको तो पता नहीं होता कि हमसे पाप हो रहे हैं, आप गाड़ी चलाते हैं चींटियां मर जाती हैं, है ना, आप खाना खाते हैं तो उसमें काफी सारे कीटाणु आपके पेट के मर जाते हैं, है ना, मिर्ची का खाना खाते हैं तो गले के अंदर के बैक्टीरियाज मरते हैं, हम बात करते हैं तो हवा के बैक्टीरियाज मरते हैं। इन सब ब्रह्महत्या के पापी व्यक्ति क्या करे, कैसे मुक्त हो, तो उसके लिए सदर उपाय है कि तुलसी महारानी की सेवा भगवान के चरणों में करें। यदि व्यक्ति श्री हरि के सिर पर तुलसी अर्पित करता है, मतलब भगवान की गोवर्धन शिला, शालिग्राम शिला या भगवान के विग्रह के सिर पर तुलसी की मंजरी अर्पित करता है, तब यह अनुपम कार्य उसको अकथनीय एवं गोपनीय अनेक पाप राशियों को ध्वंस कर देता है। ऐसे पाप जो कि जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं होगा कि अरे मैं पाप कर रहा था, वो पाप भी उसके मुक्त हो जाएंगे, पाप राशियां। और स्कंद पुराण में आया है, कहते हैं जो व्यक्ति तुलसी दल व मंजरी भगवान के सिर देश पर प्रदत्त करता है उसे कोटि स्वर्ण राशि दान करने से अधिक फल प्राप्त होता है। द्वापर युग में भगवान को सोना दान किया जाता था, तो अभी तो कलयुग में सोना दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तुलसी पत्र चढ़ाने से कोटि स्वर्ण राशि मतलब करोड़ों रुपए का सोना दान करने के बराबर का फल उस व्यक्ति को मिलता है जो एक पत्र तुलसी महारानी को अर्पित करता है। तो हम विशेष कर प्रयास करें, हमेशा भगवान की जब भी ऑफरिंग करें, पूजा करें, तो एक पत्र भगवान के चरणों में अर्पित जरूर करें। पद्म पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति तुलसी मंजरी के द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसे पुनः माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। वेरी सिंपल, है ना, बार बार इसी गर्भ में संसार में आना पड़ता है, दुखालयम संसार में माँ के गर्भ में आते हैं, खून पी पस उसी जीवन को जीना पड़ता है। इससे मुक्त होने का सरल उपाय है तुलसी की सेवा करना। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, तुलसी विग्रह की सेवा करें, तो बस फिर इस संसार में वापस आने का टिकट कैंसिल। कहाँ का टिकट मिल जाएगा? हाँ जी, वैकुंठ धाम का, गोलोक धाम का मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति धार्मिक या अधार्मिक क्यों ना हो, यदि उसने केशव की पूजा तुलसी के द्वारा की है तो उसे मेरा स्पर्श नहीं होगा, बल्कि वह विष्णु दूत द्वारा ले जाने के योग हो जाता है। किसने कहा है? यमराज ने। यमराज ने श्री हरि भक्ति सदोदय ग्रंथ के अंदर यमराज वर्णन कर रहे हैं कि जिसने कभी तुलसी महारानी की पत्तियों का स्पर्श किया है और उनके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। तुलसी के प्रति बहुत अपराध होता है, कैसे, जैसे तुलसी महारानी की छाया जहां पड़ती है उस पर आपने पांव रखा तो अपराध, तो आपके सारे पाप राशियां जो कैंसिल हुई थी वो वापस क्रेडिट हो जाएंगे। तुलसी महारानी के पत्र को तोड़ते वक्त इस उंगली का इस्तेमाल किया अपराध। तुलसी महारानी अपने घर में लगाई उसमें इतना पानी डाल दिया कि वो चली गई अपराध। तुलसी महारानी को निर्वस्त्र कर दिया अपराध। तुलसी महारानी के उन पत्तों को तोड़ा जो हरे हरे थे छोड़ करके जो सूखे थे अपराध। तुलसी महारानी के सामने चप्पल पहन के चले गए अपराध। तुलसी महारानी को उठा करके देवी देवताओं के चरणों में चढ़ा दिया अपराध। इन अपराधों से बचते हुए जो मेरी से भगवान की तुलसी की सेवा करेगा उसको यमराज कह रहे हैं। यम दूत कभी नहीं आएंगे, विष्णु दूत लेने के लिए आते हैं। तो इस तरह से इतनी महिमा है। तुलसी पत्र धारण करने की भी बहुत महिमा है। कहते हैं जो व्यक्ति अपने सिर पर तुलसी धारण करता है ना, कई लोग सिर के ऊपर तुलसी महारानी को धारण करते हैं, मतलब तुलसी की लकड़ी जो होती है ना उसको सिर पे, जैसे माताएं लोग लगाती है ना, जूड़ा बनाती हैं, उसके अंदर क्लिप लगाती हैं या बालों में क्लिप लगाते हैं, अगर वो तुलसी की डंडी लगा लें तो सिर पर आ गई, है ना। आजकल तो प्रभु जी लोग भी लगाते हैं, हमारे तो बाल नहीं है, लेकिन अगर लगाएं तो लगाने से, कहते हैं जब वो तुलसी को सर पर धारण करके चलेगा तो वो त्रिभुवन को पवित्र करने का सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति बन जाएगा। त्रिभुवन मतलब तीनों भुवनों को सामर्थ है इतना कि वो पवित्र कर सकता है। जहां जहां वो कदम रखेगा वो स्थान पवित्र बनता जाएगा। सिरो देश तुलसी धारणम, सिर के देश में तुलसी को धारण करना। फिर आगे कर्ण मूले धारणम, इस कान के अंदर तुलसी महारानी को धारण करना। तो कई प्रभु जी धारण करते हैं आजकल सोने के कुंडल या चांदी के कुंडल, या माताएं धारण करती हैं सोना चांदी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अगर तुलसी धारण करें तो क्या होता है, वो कहते हैं कि तुलसी पत्र धारण करने से किसी भी प्रकार के उपपाप विद्यमान नहीं रहते, मतलब पाप रहेंगे ही नहीं उसके जीवन में, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। तो इतनी महिमा है तुलसी को धारण करने से। और कोई व्यक्ति अगर तुलसी की कंठी माला धारण करता है, जैसे प्रभु जी ने करी है, प्रभु जी ने की है, उन्होंने की है, उन्होंने भी की है, कई लोगों ने नहीं करी है, तो तुलसी की महिमा ये है, तुलसी के काष्ठ या कंठी माला या जप माला बनाकर भक्ति में साधना करने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, क्षय मतलब नाश, हाँ अनएंडिंग अनलिमिटेड, हाँ तो ऐसा फल मिलेगा। आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसका, अगर किसी को एक मिलेगा जिसने तुलसी धारण नहीं किया है, तुलसी धारण करने वाले को 100, हाँ आप वृंदावन जाएंगे उस व्यक्ति को एक मिलेगा तो हमको कितना मिलेगा, 100। तो इस तरह से, और वो भी उसका क्या होगा, जब वो पाप करेगा तो फल उसका नष्ट हो जाएगा, 1-1 0, लेकिन हमारा 1-1 1, खत्म नहीं होगा, अक्षय फल प्राप्त होता है। ये शक्ति है कंठी माला धारण करने की। लेकिन इस कंठी माला को धारण करने के नियम है कि हमें चार कार्य नहीं करने हैं। क्या 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 नहीं करना है, हमें नशा पान नहीं करना है, उस नशे के अंदर चाय कॉफी भी आती है। हमको नॉन वेज नहीं खाना है, तो नॉन वेज में मांसाहार के साथ साथ लहसुन प्याज भी आता है। हमको पर स्त्री संग नहीं करना है, और उसके साथ साथ हमको जुआ आदि की आदतों में नहीं पड़ना। अगर हम इन कार्यों से बचते हुए तुलसी धारण करते हैं तो हमको क्या होगा, जो भी कार्य करेंगे अक्षय फल प्राप्त होगा, है ना। देखते हैं बिजनेस लगाया लॉस हो गया, घर बनाया आग लग गई, ये सारे के सारे के पीछे कारण क्या होता है कि हम तुलसी की सेवा को सही रूप से नहीं कर रहे हैं, अक्षय फल नहीं प्राप्त होता। तुलसी काष्ठ चंदन महिमा, इसमें कहा गया है शरीर को त्यागते समय यदि तुलसी चंदन के द्वारा व्यक्ति का शरीर लेपित हुआ हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत स्वरूप प्राप्त करके उसे निज धाम में निवास करता है। कलयुग में भगवान को तुलसी चंदन प्रदान करने से व्यक्ति इस जगत में विद्वान नहीं रहता, वह भगवत धाम का निवासी बन जाता है। मतलब अगर भगवान को चंदन लगाना हो तो या तो चंदन की लकड़ी का चंदन या फिर तुलसी की लकड़ी का चंदन। तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाने से भगवत धाम में टिकट पक्का हो जाता है, लॉक हो जाता है एक रूम आपका। और कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ दिया है तो उसको जलाते वक्त, उसकी दाह संस्कार करते वक्त अगर तुलसी की लकड़ी या तुलसी का चंदन उसके शरीर पर लगाया जाए या तुलसी की लकड़ी रख दी जाए तो भी उसको बहुत कृपा प्राप्त होती है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर वो भक्त हो तो भगवत धाम जाता है। तुलसी युक्त स्नान महिमा, इसमें कहते हैं जो व्यक्ति अपने सिर पर तुलसी युक्त जल धारण करता है उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो तुलसी के पत्तों को कभी भी सूखे रूप में भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते पहले तोड़े, कौन से पत्ते तोड़े, जो कोमल हो, कमजोर हो, जो जो कि हरे ज्यादा डार्क ग्रीन ना हो। बहुत ज्यादा हरे डार्क ग्रीन पत्तों को तोड़ते वक्त तुलसी महारानी को कष्ट होता है, क्योंकि हमने पिछली कथा में सुना था तुलसी महारानी के पत्ते किससे बने थे? वृंदा देवी के बालों से। तो जब हम इसे खींचते हैं तो वृंदा देवी जो महारानी है, जो सच में एक देवी है, उनको कष्ट पहुंचता है, जैसे हम किसी स्त्री के बालों को खींच रहे हैं ऐसे। तो इसलिए ऐसे ऐसे करके नहीं करना चाहिए, एक हाथ से डंडी पकड़कर धीरे धीरे उनकी पत्तियों को तोड़ना चाहिए और उनको संभाल करके रखना चाहिए। हाँ, ये नहीं करना चाहिए बार बार भोग लगाया तो हर बार दो पत्ते तोड़ लिए। सुबह आरती से पहले या आरती के बाद, सुबह 7 से 8 या 10 के बीच में, सूर्य उदय के बाद, सूर्य अस्त से पहले एक समय चुनें जिस समय काफी सारे पत्ते चुन लें, ताकि आप पूरा दिन भोग लगा सकें 10 बार 20 बार 15 बार। ऐसा ना हो कि आप बार बार ओहो बिस्किट तो रह गया, ओहो चाय तो रह गई, ओहो ये तो रह गया, तो इस तरह से नहीं। और खासकर चाय जैसी चीजों में तो तुलसी का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। जो गर्म पदार्थ है, चाय दूध, इसमें तो तुलसी महारानी को डालने का मतलब हो गया तुलसी देवी को कष्ट पहुंचाना। आपके शरीर पे अगर कोई जलती चाय डाल दे, जलता दूध डाल दे, तो कितना कष्ट पहुंचता है। और फिर हम सोचते हैं आहा, मैं निरोगी हो जाऊंगा, तुलसी की चाय पीऊंगा, मेरा सर्दी खांसी जुगाम, सर्दी खांसी भगाने के चक्कर में महा अपराधी बन गए। हाँ भैया दिमाग खराब है, महा अपराधी बनने का कौन पाप अपने सिर लेगा एक तुलसी महारानी की चाय पीने के चक्कर में। हा? वो सब नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, भक्त को खास करके कभी ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो तुलसी को ड्राइड लीव्स को धोना चाहिए, और धोने के बाद में क्या करना चाहिए, धोना मतलब स्नान कराना, उनको पानी से साफ करके भगवान के चरणों में चढ़ाएं, और जो गंगा जल जो बच जाए वो गंगा जल अपने सिर पर धारण करें या फिर पेड़ के वृक्ष की जड़ में डालें, ये ना हो उसे नाली में फेंक दें। तो फिर तुलसी जल को नाली में फेंकने से अपराध तो बहुत, इसीलिए इसको कहा जाता है सेवा अपराध। जितने सेवा का कृपा से ज्यादा हम अपराध करते हैं, क्योंकि मेंटेलिटी अपराधी है ना, तो अपराधी मेंटेलिटी से अपराध ज्यादा है, सेवा की कृपा कम है। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे और सोचेंगे हमने एक पौधा लगा दिया अब यमराज नहीं आएंगे, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। भक्ति करनी है तो तरीके से करो, वरना मत करो, इस पार या उस पार, बीच बीच का नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए आगे तुलसी के प्राकट्य की हम कथा सुनने जा रहे हैं। ये श्री बृहद धर्म पुराण, हमने पिछली बार सुनी थी कथा, वो कहाँ से सुनी थी, कौन बताएंगे? हमने बताया था कथा, हाँ जी, और कौन कहाँ से सुनी, कौन से स्कंद से सुनी थी, हमने कौन से शास्त्र से सुनी थी कथा? हाँ, हमने जो कथा सुनी थी पिछली बार वो थी ब्रह्म वैवत पुराण और स्कंद पुराण से, और आज हम सुनने जा रहे हैं बृहद धर्म पुराण से। तो ये भी एक पुराण है वेद व्यास जी के द्वारा रचित। तो इसमें आता है, इस पुराण के अंदर अब हम कथा सुनेंगे कि एक बार एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था धर्मदेव। क्या नाम था? कहाँ रहते थे वो? कैलाश पर्वत पे, है ना, सावन के महीने में शिव जी के धाम की कथा हम सुनने जा रहे हैं, तो आपको कृपा मिलेगी कथा सुनने की। तो कैलाश पर्वत पे धर्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, और उस धर्मदेव ब्राह्मण के एक सुशीला पत्नी थी, बहुत सुंदर, अच्छी और कार्य करने वाली, भक्ति भजन करने वाली, और उसका पति शास्त्रों का परांगत विद्वान था, सदा ही भगवान के नाम जप में रुचि और शास्त्र अध्ययन, शास्त्र प्रचार में बिजी रहता था, व्यस्त रहता था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो उसकी इतनी सेवा करती थी कि वो भी सती साध्वी और पतिव्रता बन चुकी थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने घर में तैयारी करी भोजन प्रसादी, और भोजन करने से पहले, जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुना कि गंगा स्नान या स्नान करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करने के बाद ही भोजन लेते हैं? स्नान से पहले भी भोजन लेते हैं कुछ लोग, तो कोशिश करें कि स्नान करने के बाद ही भोजन लें। हाँ, वैष्णवों का नियम है कि दिन में 2 या 3 बार स्नान करते हैं और शाम का भोजन भी स्नान के बाद ही लेते हैं, तो स्नान करने के बाद भोजन लेने की विधि है। तो वो स्नान करने गए थे और उनकी पत्नी ने सारी तैयारी करी थी, लेकिन उसको बहुत जोर की भूख लगने लगी। कहा, आज पतिदेव धर्मदेव ब्राह्मण देर कर रहे हैं और समय निकला जा रहा है और मुझे भूख लग रही है, और मेरे पेट में क्या कूद रहे हैं? चूहे कूद रहे हैं, बैक्टीरिया भी कूद सकते हैं लेकिन हम चूहे बोलते हैं, तो कूद रहे हैं और मुझे भूख लग रही है, और अब मैं क्या चाहती हूँ, जल्दी से प्रसाद ग्रहण करना चाहती हूँ। और समय गुजरता जा रहा था, उधर धर्मदेव ब्राह्मण देरी से आए, गंगा नदी की गुणगान गाने लग गए, स्नान में बिजी हो गए, और जब लौट के आए तो देखा कि वो प्रसाद पा रही है, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या कहा, अगर तुम अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकती हो तो तुम तो कैसी बन गई हो, राक्षस जैसी हो गई हो। राक्षसों का क्या स्वभाव होता है, रात को भूख लगती है 12 बजे ब्रेड खाते हैं, ये राक्षस का स्वभाव है, आप लोग खाते हो तो देख लीजिएगा, रात को ब्रेड खाते हैं 12 बजे, 2 बजे भूख लगती है, कभी भी भूख लग जाती है, कोई नियम नहीं है भूख का कि भाई संध्यास्त के बाद नहीं खाएंगे या 9 बजे के बाद नहीं खाएंगे, सूर्य उदय से पहले नहीं खाएंगे, कभी भी खा लेते हैं। आजकल तो लोग 24/7 के चक्कर में कभी भी खाते हैं और इसीलिए अस्वस्थ रहते हैं, एम्स का बिजनेस बढ़ता जा रहा है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इस कारण से बीमारी आती है। तो उसने कहा तुम्हें भूख कंट्रोल नहीं होती तो क्या बन जाओ, राक्षस बन जाओ। और ब्रह्मदेव ब्राह्मण शक्तिशाली ब्राह्मण था, उसके एक बार बोलते ही वो स्त्री क्या बन गई, राक्षस बन गई, और राक्षस बन के इधर उधर विचरण करने लगी, कुछ मिल जाता तो खाती, कुछ नहीं मिल जाता तो भूखी रहती। थी तो वो कौन, ब्राह्मण की पत्नी, लेकिन शरीर किसका बन गया, राक्षस का, लेकिन चेतना कैसी है, ब्राह्मण जैसी। अभी कैलाश पर्वत में आसपास वो जो भी लोगों को देखती खाने के लिए, सोचती अरे ये तो बेचारा बड़ी कृपा करके कैलाश पर्वत पे पहुंचा है, अब मैं इसको खा जाऊंगी तो इसके भजन का क्या होगा, तो छोड़ देती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि 3-4 दिन भूखी रही, और भूखी रहते रहते 7 दिन बीत गए, और 7 दिन में उसका शरीर कैसा हो गया, एकदम कोमल शिथिल पड़ गया। कहते हैं यहां पर लिखा है, श्रुत्वा कृष्णस्य नामानि लब्धा नामामि तनुम। इसमें लिखा है श्रुत्वा कृष्णस्य नामानि, हमेशा क्या करती थी, कृष्ण के बारे में सुनती थी, और लब्धा नाम मई तनुम, और उसको लाभ था, लाभ प्राप्त हुआ था अपने पति से भगवान के नामों को सुनने से। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति भगवान के नामों को सुनता है और बोलता है, उसके शरीर में भी हरे कृष्ण छप जाता है शरीर में। कई बार आप देखेंगे जो लोग रोज तिलक लगाते हैं ना, कभी वो तिलक ना भी लगाएं तो लगता है अरे आपके आपने तिलक लगाया लेकिन मिट गया है, ऐसा लगता है। तो मैं कई बार चेक करता हूँ बिना तिलक लगाए, पूछता हूँ क्या मैंने तिलक लगाया, लोग कहते हैं हाँ हाँ आपने तिलक लगाया, मैं तो तिलक नहीं लगाया, ये छप गया है। इसी तरह से एक बार श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य बैठे थे, और एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद जी आप कहते हैं भक्त को कीर्तनीय सदा हरि, सदा भगवान के नामों का जप करना चाहिए, पर हम देखते हैं कि कई बार आप अपनी माला से जप नहीं कर रहे होते हैं, आप प्रचार करते हैं, अपनी छड़ी लेकर पैदल चलते हैं, तो आप कब भगवान के नामों का जप करते हैं, 24 घंटे तो नहीं कर पाते हैं। तो उस समय वो भक्त प्रभुपाद जी की मालिश कर रहा था, उनका नियम था रोज मालिश करवाने का, तो जब वो मालिश कर रहा था प्रभुपाद जी ने कहा, शिला प्रभुपाद महाराज कहते हैं मेरी पीठ के ऊपर अपने कान लगाओ, क्या करो, मेरी पीठ के ऊपर अपने कान लगाओ। जब उन्होंने कान लगाया तो उसे क्या सुनाई दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है, आत्मा। शरीर जो है कपड़े खाना थोड़ी खाते हैं, खाना कौन खाता है, हम खाते हैं, ऐसे हरि नाम हम नहीं लेते हैं, आत्मा लेती है, और इसलिए हमारे मुंह बंद करने के बाद भी आत्मा जप करती रहती है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन कई दिनों तक उसको अगर हरे कृष्ण ना दें हाँ तो नो साइट आउट ऑफ माइंड, जैसे ही दिखना बंद होता है हमारे माइंड से वो चला जाता है, दिमाग से, और आत्मा फिर चुप हो जाती है, लेकिन आत्मा इंतजार कर रही होती है आप हरे कृष्णा बोलो, वो चैंट करने लग जाती है। और इस तरह से पूरी पूरी रात्रि हम जप कर सकते हैं, अगर सोने से पहले हम कथा पढ़ें, कथा करें, जप करें, तो पूरी रात्रि सोने के बाद भी आत्मा हरे कृष्ण जप कर सकती है, और वो 7 घंटे 6 घंटे समाधिस्थ कहलाते हैं, सोया हुआ व्यक्ति भी समाधि में कहलाता है, क्योंकि व्यक्ति ने जप किया है सोने से पहले और उठने के बाद। तो ये नियम है, ऐसा ना हो आप बोलें कि एक माला कर ली और 7 घंटे मैंने जप किया, प्रभु जी 16 माला नहीं करता हूँ, सोते सोते 7 घंटे जप करता हूँ, तो वो भी नहीं है, उठने के बाद 2 घंटे जप अपना करना है, लेकिन 7 घंटे एडिशनल जप की कृपा मिल जाएगी। तो उसके शरीर पर भी क्या हुआ, श्रुत्वा कृष्णस्य नामानि, कृष्ण का नाम सुनने से उस स्त्री के पूरे शरीर पर छप गया था क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके शरीर त्याग दिया उसने भूख के मारे, और शरीर त्यागने के बाद में उसका शरीर कैलाश की बर्फ में पड़ा रहा। लेकिन अब बर्फ में अगर कभी शरीर पड़ा रहे तो क्या होगा, गल जाएगा। कई बार लोग होते हैं पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पे चढ़ने वाले, उनका जब शरीर लॉस हो जाता है तो उनकी हड्डियां दिखाई देती हैं या फिर कुछ गला सड़ा हुआ सा मांस बचता है, लेकिन जो ये स्त्री थी ब्राह्मण की पत्नी, इसका पूरा का पूरा शरीर एज इट इज कांतिमय चमकता हुआ शरीर था, और उस शरीर के ऊपर वर्णित था, लिखा हुआ था क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों? क्योंकि वो जाने से पहले अपने जब चेतना में इस शरीर में थी, सदा भगवान के नामों का कीर्तन और श्रवण करती थी। तो इस तरह से वहां एक बार शिव जी और पार्वती आए और उन्होंने कहा हमारे कैलाश में किसने शरीर छोड़ा है। एक वर्ष बीतने के बाद भी इसकी शरीर की कांति नष्ट नहीं हुई है, और इस देवी को ले जा करके क्या करो, इसको वृंदावन, एक धाम है जहां भगवान प्रकट होने वाले हैं, उस धाम में जाकर इसका रोपण करो। तो उसके बालों का रोपण किया गया, क्योंकि अभी शरीर नष्ट नहीं हो रहा है तो कुछ तो इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनसे रोपण किया, वहां बीज लगाए गए, और उन बीजों से क्या प्रकट हुआ, वृंदा देवी प्रकट हुई, वृंदा महारानी। हाँ, तो ये वो ब्राह्मण की देवी थी। इसलिए कहते हैं तुलसी के हर एक पत्र पे क्या लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पर वर्णन आया है, स्थिता प्रति दर्श मंत्रो द्वादश वर्णक ओम नमो भगवते वासुदेवयति महाफलम मंत्रस्य प्रति वर्णस्य गर्भनाम सहस्त्रकम। तुलसी के प्रत्येक पत्र पर द्वादश अक्षर विष्णु मंत्र सदैव उपस्थित रहता है। इस मंत्र के प्रति वर्ण में श्री विष्णु के सहस्त्र नाम विद्यमान है, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो एक पत्ते के अंदर है। अगर आपने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम अर्पित करने का फल प्राप्त होगा। आगे कहते हैं, हे वृंदे, जो व्यक्ति तुम्हारी प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करेगा वे सप्त दीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान होगा। मतलब जो ये सात द्वीप हैं, सेवन कॉन्टिनेंट्स, इसकी परिक्रमा करने के बराबर का फल तुलसी परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। तो आप जाना चाहते हैं वर्ल्ड टूर पे, कितने लोग निकलेंगे वर्ल्ड टूर पे, वर्ल्ड टूर पे कितने लोग जाएंगे? अरे भाई, तुलसी परिक्रमा करने से वर्ल्ड टूर का कृपा मिलने वाली है, जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, अभी भी कई लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपकी इच्छा रही है, यही सफदरजंग एम्स में घूमते रहिए। तुम्हारे पत्र के व्यक्तिगत श्राद्ध तर्पण दान भोग अर्पण कभी भी पूर्ण नहीं होगा। अगर हम कभी कोई श्राद्ध कर्म करते हैं, अगर हम कभी कोई तर्पण दान करते हैं और तुलसी के बिना करते हैं भगवान के चरणों में, तो फिर क्या होगा, उसका कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, एक पत्र के द्वारा यदि कोई व्यक्ति मेरी कार्तिक मास में पूजा करेगा उसे सहस्त्र गो दान करने का फल प्राप्त होगा। सहस्त्र मतलब 1000 गाय दान करने का फल एक तुलसी दल कार्तिक मास में श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करने से प्राप्त होता है, और फल कैसा होता है, अक्षय, कभी नाश ना होने वाला। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ऐसा फल? आगे कहते हैं, उपदेशस्य ददेदस्य स्वयामाचरेता पुनः यायाति परम स्थानम माधवस्य निकेतनम। जो व्यक्ति तुलसी के पूजन एवं महिमा का उपदेश दूसरों को देता है, अभी आपने सुना, अब इसका उपदेश दूसरों को देंगे कि नहीं देंगे, तो उसका फल हम बता रहे हैं आपको। उपदेशस्य ददेदस्य, जो व्यक्ति तुलसी महारानी का उपदेश दूसरों को देता है और स्वयं भी तुलसी की हृदय पूर्वक सेवा करता है, स्वयं आचरित है पुनः या सयाति परम स्थानम माधवस्य निकेतनम, वो व्यक्ति अपने शरीर छोड़ने के बाद में भगवान माधव के धाम को प्राप्त करता है। हरि बोल। तो सुनाएंगे तुलसी की महिमा दूसरों लोगों को या नहीं, सुनकर के अपने कान से और अपने बस बोलेंगे, अब हम नहीं बताएंगे, सीक्रेट पता चल गया, नहीं 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 कभी नहीं बताएंगे कि नहीं? ठीक है, तो सब लोगों को बताना चाहिए। तो अभी हम कुछ प्रश्न यहाँ पर जो हमारे से लोग पूछते हैं वो लेने जा रहे हैं, ताकि आप सुने किस तरह से तुलसी से सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं, तुलसी महारानी को दवाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, हाँ या ना, कितने लोग हाँ बोलते हैं? हाँ, तो इसका उत्तर है ना, कभी भी इसका प्रयोग दवाई के रूप में नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। दवाई के रूप में जो व्यक्ति करेगा तो जितनी हमने इसकी महिमा सुनी है वो महिमा आपके जीवन से चली जाएगी, दवाई के रूप में कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। और फिर आगे आता है, क्या हमें गर्म चीजें, चाय या दूध या गर्म पानी, ऐसी चीजों का जब हम सेवन करते हैं, हम भगवान को भोग तो लगाएंगे प्रभु जी दूध पीने से पहले, तो जब हम दूध भगवान को लगाएंगे, आपने कहा भगवान बिन तुलसा प्रभु एक ना मानी, नमो नमो तुलसा महारानी, तो फिर भगवान की तुलसा अर्पित करेंगे, तो क्या ये सही है? हाँ या ना? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जलती चीज में अगर तुलसी को डालेंगे तो फिर आपको कृपा नहीं मिलेगी, अपराध हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल करके दूध को, नॉर्मल मतलब ज्यादा गर्म ना हो, थोड़ा हल्का गर्म, उसमें तुलसी डाल सकते हैं। तुलसी में भोग लगाने के बाद में जो तुलसी का, जैसे आपने चावल में भोग लगाया और चावल भोग बनने के बाद प्रसाद में परिवर्तित हो गया, अब वो आपने उठाकर उसको रख दिया और आपके घर में पति देव या फिर पिता या फिर पुत्र या फिर आप खुद शाम को घर आए और आपने सोचा चलो चावल को गर्म करके खाते हैं, और आपने उसको कढ़ाई में डाल दिया या माइक्रोवेव में डाल दिया, तुलसी की पत्र भी उसमें चला गया, तो फिर क्या होगा? अपराध होगा। इसलिए तुलसी का भोग लगने के बाद में सबसे पहले भोग में से तुलसी पत्र चुनने चाहिए और उनको एक कटोरी में अलग रख देना चाहिए, ताकि आप उसको घर वालों को बांट सकें या खुद उसको खा सकें, प्रसाद ग्रहण करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, क्या हम तुलसी महारानी की जड़ें बहुत फैल जाती हैं, कई बार बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है, तो उसकी मेंटेनेंस करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए क्या उसकी छटाई कटाई कर सकते हैं? हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? कितने लोग हाँ? अभी लोग डर गए, बोली नहीं रहे। हाँ या ना? बोलिए बोलिए, कौन बनेगा कृष्ण का डिवोटी? हाँ या ना? कर सकते हैं या नहीं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कर सकते हैं? इस तरीके से करना चाहिए कि तुलसी महारानी को कष्ट ना पहुंचे, मतलब वो इससे पहले कि वो झाड़ बन जाए, उनको देवी बनने की ही इरादा, देवी ही बना के रखना चाहिए अपने घर के अंदर, है ना। और कभी कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना, ज्यादा ज्यादा लंबी लंबी डंडियां हो गई, इतना बड़ा बड़ा पूरा गार्डन में तुलसी आ गई, तो ये ले फावड़ा, ये ले कैंची, ये काट दिया, वो काट दिया, जैसे पेड़ को काटते हैं वैसे तुलसी को नहीं काटना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा कि शिला प्रभुपाद जी, हम तुलसी महारानी को तोड़ने के लिए, पत्तों को तोड़ने के लिए कैंची का प्रयोग करें या चाकू का प्रयोग करें? तो प्रभुपाद जी ने कहा, न चाकू का प्रयोग करो, न कैंची का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो। हाँ, बुद्धि क्या कहती है? हल्के से पत्ते को तोड़ो और इस्तेमाल कर लो, वेरी सिंपल, है ना। तो अपने इस तरह से हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, कोई कैंची, कोई चाकू, कोई दराती, कोई फावड़ा तुलसी महारानी पे नहीं चलाना चाहिए। हाँ, उनको कष्ट पहुंचता है देवी को। फिर आगे आता है कि हमें इनको किस तरह से अपने घर में संभाल करके रखना चाहिए, भक्त पूछते हैं, तो कैसे रखना चाहिए? तो भगवान की तुलसी भोग के लिए जब हमने सुबह तोड़ी, मान लीजिए आपने 15 पत्तियां तोड़ ली और एक जल के भरा हुआ एक स्टील का बर्तन है या हाँ उस बर्तन में आपने रख दी, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, फ्रिज में या फिर बर्फ डाल के, वरना क्या होगा, तुलसी की पत्तियां गल जाती हैं। और गली हुई पत्तियों को फेंकना नहीं चाहिए, अगर गल भी जाए तो उनकी फिर सही रूप से उपयोग करना चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी के सूखे पत्ते, तुलसी के सड़े हुए पत्ते, तुलसी के गले हुए पत्ते, तुलसी के गिरे हुए पत्ते, कोई भी पत्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि तुलसी का अगर पत्ता ना मिले, तुलसी मंजरी और तुलसी की लकड़ी भी इस्तेमाल की जाती है। जो विदेशी भक्त जहाँ पर तुलसी महारानी वातावरण के अनुसार उग नहीं पाती हैं, सही रूप नहीं ले पाती हैं, तो लोग हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ से जिन तुलसी महारानी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है और उसमें पत्ते नहीं आते हैं और वो सूख गई हैं, उन लकड़ियों को अपने साथ ले जाते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके उनसे भोग लगाते हैं। तो आप देखिए, तुलसी महारानी शरीर त्यागने के बाद भी उनका शरीर दिव्य है, है ना। अभी हमने कथा सुनी थी किस तरह से उनके शरीर त्यागने के बाद भी उनके शरीर का कोई नाश नहीं हुआ है। आगे आता है, क्या हम तुलसी के पत्तों को चबा सकते हैं? चबा सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, कितने लोग बोलते हैं? हाँ, कितने लोग बोलते हैं? अच्छा, नहीं, कितने लोग बोलते हैं? मतलब सब लोग नहीं वाले हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा है कि अगर तुलसी महारानी के पत्ते को, ऐसा भी नहीं है कि दांत नहीं लगना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए पर ऐसा भी नहीं दांत ना लगे. कोई लोग कंपटीशन ही करते रहते, ये गया अंदर सीधा, हाँ, और फिर पानी पीते गले में फंस गया, क्या हुआ, तुलसी अटक गई. तो ये नहीं करना चाहिए, नॉर्मली रखें उसको अपने मुंह में. दांत थोड़ा बहुत लग गया ठीक है, लेकिन च्युइंगम की तरह ऐसे भी नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि उसमें दो, एक साइंटिफिक रीजन है और एक स्पिरिचुअल रीजन है. साइंटिफिक रीजन है, तुलसी महारानी की जो पत्तियां हैं इसमें मरकरी होती है, और मरकरी को बहुत चबाने से हमारे दांत में पायरिया हो जाता है ना, और दांतों के रोग होते हैं. इसलिए दांतों के रोग से बचने के लिए हमको उन्हें चबाना नहीं चाहिए. और दूसरा, तुलसी महारानी देवी स्वरूपा है तो उनको कष्ट भी नहीं पहुंचाना चाहिए. वो हम पर कृपा करें और हम उन्हें कष्ट पहुंचाएं. लेकिन बात ऐसी है कि अगर दांत छुल गया तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि पेट में जाने के बाद में आपकी इंटेस्टाइन और स्टमक और वेन्स और ब्लड और उसमें तो वो जाने वाली है. तो इसीलिए दांत लगने का कोई अपराध नहीं, लेकिन चबाना नहीं चाहिए बहुत जोर जोर से उनको, ठीक है. तो इस तरह से तुलसी महारानी है. क्या तुलसी महारानी को भोग लगाते वक्त अगर एक ही पत्ता बचा है, प्रभु जी वो आखिरी एक पत्ता बचा था और रात के 10 बज चुके थे और भोग भी लगाना था, अब हम क्या करें? आपने कहा हर सब्जी हर फल हर एक चीज पर एक पत्ता होना चाहिए, अब हम क्या करें? तो क्या तुलसी के पत्ते को चार भाग में बांटकर एक चावल पे उसका एक हिस्सा, एक रोटी पे, एक दाल की सब्जी में और एक सलाद में डाल सकते हैं? हाँ या नहीं? हाँ, डाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है. तुलसी महारानी को ब्रेक कर सकते हैं हाथों से, सॉफ्टली चार भाग में बांट के चार चीजों पर डाल सकते हैं, पर यह नियम नहीं होना चाहिए. कोशिश करें सुबह सही मात्रा में, आपको पता है मैं दिन में दो बार खाऊंगा, चार बार खाऊंगा, चार चीजें खाऊंगा, 15 चीजें खाऊंगा, उसके अनुसार पत्ते तोड़े. तुलसी महारानी के ऊपर अगर पत्ते हैं ही नहीं, जैसे ये है, अब इसमें से पत्ते तोड़ लेंगे तो इसमें बचेगा क्या? तो तुलसी महारानी ऐसी पूजा करने के लिए होती हैं, इससे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए. अगर आप पत्ते तोड़ना चाहते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी करिए, या फिर 10-12 पौधे लगाइए, वरना एक दिन तुलसी महारानी से पत्ते तोड़ लेंगे तो बिना पत्ते के हो जाएंगे, है ना, जैसे हम बिना कार के, बिना वस्त्र के, बिना FD बैंक बैलेंस के हो जाते हैं, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है. क्या हम और आता है इसके अंदर, क्या हम पीली पत्तियां तोड़ सकते हैं? तो हाँ, हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि हम पीली पत्तियां हो या फिर सूखी पत्तियां हो, गली हुई हो, हम उन्हें तोड़ सकते हैं. कई बार तुलसी पर कीड़े लग जाते हैं और उसमें से देखते हैं पत्ते बीच में से काले रंग के कीड़े खा गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो प्रभु जी लेते हैं हम एक जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और फिर हम उनको डाल देते हैं तुलसी महारानी के ऊपर, बड़ी आसानी से, बहुत सिंपल सा है, और पेड़ पौधों पर डालते हैं, एम्स में बड़ी फ्रीली मिल जाता है, तो हम तुलसी पे भी डाल देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है. तुलसी के ऊपर, तुलसी महारानी के ऊपर खाली नीम के पत्तों को गलाकर पानी में डालकर उसका स्प्रे बनाकर डाल सकते हैं, अन्यथा और कोई स्प्रे नहीं डाला जाता. अगर कीड़े लग गए हैं तो उन पत्तों पर जिन पे कीड़े लगे उनको धीरे धीरे करके तोड़ लें और फिर उनको किसी पेड़ की वृक्ष के छाल में, जड़ में डाल दें. ऐसा ना करें कि कीड़े लग गए, ओहो अब तो मैं क्या करूं, छोड़ दो, तो धीरे धीरे पूरे वृक्ष को ही तुलसी महारानी समाप्त हो जाएंगी. तो इस तरह से जब हम करते हैं तो तुलसी जब अपने शरीर को त्यागती हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने के लिए. इसलिए कोशिश करें अगर पौधा लगाया है तो उसकी सही रूप से देखभाल हमें करनी चाहिए, ठीक है. और किसी का कोई प्रश्न है तुलसी महारानी से? एनीथिंग? बहुत सारे क्वेश्चन से हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए. कोशिश करें तुलसी महारानी को कंठ में धारण करें अपने. तो कितने लोग तैयार हैं तुलसी को कंठ में धारण करने के लिए आज से? हाँ, तो ये तुलसी की बहुत विशेष महिमा है. इतना सुनने के बाद भी कुछ लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, अब आप लोगों का तो देवता ही भला कर सकता है, भगवान कर सकता है, हम तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कथा सुना सकते थे, हमने सुना दी, आगे की इच्छा आपकी है, ठीक है. तो अभी यहाँ पर कुछ भक्त आए हैं हमारे साथ में द्वारका मंदिर से, क्योंकि अभी 25 अगस्त को जन्माष्टमी है. जानते जन्माष्टमी सब लोग? कितने लोग जानते जन्माष्टमी? जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है ना, भगवान का प्रकट दिन होता है, और उस दिन भगवान की सेवा करने से अक्षय फल प्राप्त होता है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है. तो उस दिन भगवान को 1008 भोग लगते हैं, तुलसी पत्र से सेवा की जाती है, और वहां पर 400,000 लोग आते हैं इस्कॉन द्वारका में लोगों भगवान का दर्शन करने के लिए. तो इतना सब अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग भगवान की सेवा के लिए कुछ लक्ष्मी कलेक्ट करते हैं. तो आप लोग अगर भगवान की सेवा में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो ये भक्त आए हैं, आप इनसे कुछ 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1100 रुपए जो भी है हुंडी में भगवान की सेवा को उसकी रसीद भी आपको दे देंगे साथ के साथ, अगर आप देना चाहते हैं तो, कोई फोर्स नहीं है, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को भी भगवान की सेवा की कृपा दें तो क्या करना चाहिए, आप एक बुकलेट ले सकते हैं जिसमें 25 लीव्स हैं और फिर जाकर के अपने रिलेटिव्स अपने पड़ोसियों से इकट्ठा कर सकते हैं और फिर अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमको दे सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। तो इसमें कोई फोर्स नहीं है, पर यह सच्चाई ये है कि जो जितनी सेवा करता है उसको उतनी मेवा प्राप्त होती है। पर अंत में कहते हैं ना लोग, अभी हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जब वो बेड पे होते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं प्लीज हमारे लिए आरती करा दो, अब आरती कुछ नहीं कर सकती आपका, जब मौका था शरीर चलता था तब कथा सुनने के बाद इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते थे, प्रसाद को लेके पेट में घर चले जाते थे। लेकिन सच्चाई ये है जो व्यक्ति इस कान से सुनकर अपने हृदय में धारण करके भगवान की सेवा में लगता है उसको मेवा बहुत मिलती है, अधिक कृपा मिलती है। तो भगवान की सेवा में जब तक शरीर चल रहा है हमें लग जाना चाहिए।